सभी के मन में श्रेष्ठ स्थिति बनाने की बहुत उमंग दिखाई दे रही है। ठीक है बहनों, उससे प्रश्न अच्छा है, अच्छी उमंग सबको है। पहले ही दो चीज पे आपका ध्यान खिंचा दूं, जीवन में बहुत अच्छा आनंद रहता है, उमंग उत्साह हमारी प्राप्तियों से बढ़ती है, तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह रहेगा दो अभ्यास से। हम सब उनको जानते हैं, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ, किसी के हल्के हो गए हों तो फिर से चुस्त कर दें। पांच स्वरूपों का अभ्यास और सकास देना। सकास देने में एक और सुंदर सी बात हम जोड़ लें कि मैं फरिश्ता एक ऊंची पहाड़ी पर हूँ। विजन बनाएं और बाबा की किरणें पड़ रही हैं और फिर मुझसे फैल रही हैं, जैसे मैं लाइट हाउस माइट हाउस, मुझसे फैल रही हैं सारे संसार में। तो याद कर लें सभी, बाबा ने आखिरी मुरली में कहा सकास तो जा रही है, पर अब उन्हें ये पता चलेगा कहां से आ रही है, अभी ये पता नहीं चलता। तो हम ऐसी पावरफुल किरणें उन्हें देंगे, ये विजन बहुत ही अच्छा अनुभव कराएगा। हम एक ऊंची पहाड़ी पर हैं, चाहे सूक्ष्म वतन में कर लें चाहे इधर ही, जो जिसको इजी पड़े। ये दोनों बातें हम चालू रखेंगे रोज सवेरे। पांच स्वरूपों का अभ्यास पांच बार जरूर कर लें, उससे ही या बाद में भी 6 बजे तक मुरली तक, क्योंकि पांच स्वरूप एक ऐसी स्थिति है जो हमें हमारे ही स्वरूपों की स्मृति दिलाते हैं, और अपने ही स्वरूप में स्थित होना कठिन नहीं होता। मुरली में भी था अभी पीछे नजदीक में, दूसरे की ड्रेस पहनना कठिन हो सकता है, अपनी ड्रेस पहनना नेचुरल इजी। तो ये हमारे ही स्वरूप हैं पांचों, इसमें हर एक स्वरूप का बहुत महत्व है ही, पर जब हम ब्राह्मण स्वरूप पर आते हैं तो अपने स्वमानों को याद करना, ताकि हमें अपनी शक्तियों की अपने महत्व की स्मृति आ जाए। बहुत बड़ी सुंदर चीज है, हमें ये चीज याद रहने लगे हम इस सृष्टि के श्रृंगार हैं, हम पूर्वज हैं, तो हमारे कर्मों का पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। बहुत सुंदर चीज है। तो हम जागृत रहेंगे, थोड़े भी अलबेले नहीं होंगे, हमें याद रहे हम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। हम ढीले होंगे तो सारा कल्प वृक्ष हिलने लगेगा, हम हिलेंगे तो सब हिल जाएंगे। ये स्वमान हम रोज अपने को याद दिलाया करें, याद दिलाते दिलाते जागृति आती है और संपूर्ण जागृति हो जाएगी। सवेरे श्याम विशेष रूप से सकास। एक तीसरी चीज भी जिसका आज मुझे बहुत अच्छा ध्यान था, बाप दादा का आह्वान करना। बिल्कुल दोनों को हम निमंत्रण दें, माताएं जो घरों में रहती हैं अपने घरों में बाप दादा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे उसे, और फिर देखेंगे दोनों कैसे ऊपर से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं, आके खड़े हो गए घर में। अपने घर में उसकी उपस्थिति फील करो, आप कहीं ऑफिस में हैं, अपने सामने बाप दादा दोनों खड़े हैं, और बाबा के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, हमारे सारे घर में, सारी दुकान में, सारे ऑफिस में बहुत सुखद फीलिंग होगी। आधे मिनट का ये अनुभव आत्मा को चार्ज करने वाला होगा। इन तीनों चीजों पर शरीर फिर से अंडरलाइन करके ध्यान दें। जाएगी आज तो बाबा की मुरली में सवेरे, याद है? बात तो बड़ी सुंदर थी, तुम्हारी नींद अज्ञानियों की नींद से आधी होनी चाहिए। अब जो भी कर सकें, 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ, लेकिन ऐसा ना हो 2 बजे उठ के तो योग कर लें फिर सोते ही रहें, फिर कोई मुरली में सोते रहें, कोई ऑफिस में सोते रहें, वो भी तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत करके जिन्होंने ऐसा किया है वो फिर सारा दिन सोते रहते हैं। एक प्रोफेसर बहन बता रही थी कि मैं सवेरे कभी कभी 2 बजे उठ जाती हूँ, हालांकि पीछे सो भी लेती हूँ थोड़ा, लेकिन कॉलेज में नींद आती है। तो वो जो रूम होता है ना सबका, का उसमें मैं टेबल पे सिर रख के सो जाती हूँ, सब देखते रहते हैं इसको क्या हो गया है, थक गई है या टेंशन में है, लोग तो कुछ भी सोचेंगे। फिर बाबा ने देखा होगा हमारे संकल्प पहुंचे तो रिलैक्स कर दिया ना, अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठ जाओ, अच्छा 3 भी नहीं तो उसके बाद नहीं। तो नींद भी ठीक ठीक हो जाए, और सभी का अपना अपना जीवन, अपनी अपनी दिनचर्या, गृहस्थ वालों को तो कभी मेहमान आ गए, कभी बच्चे टीवी देख देर तक देख रहे हैं, कभी और कोई काम हो गया सो ही 12 बजे रहे हैं, तो 2 बजे उठना संभव नहीं होगा। इसलिए श्रीमत का पालन तो करना ही है, लेकिन उसमें हम ऐसे टाइट ना हो जाएं, हमें रिलैक्स भी रहना है, इजी भी बहुत रहना है। जो आज स्लोगन था, नेचर को इजी बनाओ तो सब काम इजी हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे 3 धारणाओं पर, उस पे सभी को बहुत ध्यान देना ही है। वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की सबसे सुंदर धारणाएं हैं, आप उन्हें जानते हैं। निमित्त भाव, बोलो आगे, निर्माण भाव, निर्मल, निर्मल वाणी भी, निर्मल स्थिति भी, भावनाएं भी निर्मल, अंदर भी निर्मल तो बाहर बोल भी निर्मल। इसके लिए सबसे पहली बात जो हमें इसके लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस देती है, हम बाबा की इस बात को याद कर लें, चाहे कोई रात दिन कितनी भी सेवा करे, परंतु यदि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो केवल 5% ही जमा होता है। 5% वाना 0, नथिंग। हम ध्यान देंगे इस बात पर, इतना महत्व हो गया। तीनों एक ही चीज से जुड़े हैं, अहम। अहम है तो मनुष्य के बोल भी कड़वे होते हैं, अहम है तो निमित्त भाव नहीं है। ये अहंकार जो मनुष्य के जीवन को कड़वाहट से भर देता है, जो क्रोध का बीज है, टकराव का, परिवारों में झगड़ों की जड़ है, हम जो ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें इसको पहचानना भी है और इससे मुक्त भी होना है। बाबा ने एक और सूक्ष्म बात इस अहम के बारे में कह दी, बहुत आत्माओं में माया का एक स्वरूप दिखाई देता है कि वे सोचते हैं मैं राइट हूँ। हर व्यक्ति अपने को राइट समझता है, ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। इससे टकराव होते हैं, तो हम एक अहम पे बहुत ध्यान दें, लेकिन अहम को जीतने का तरीका, अभिमान किससे जाएगा? अब तो क्लियर है उत्तर, स्वमान से। इसके अलावा अभिमान का ज्ञान होना, अभिमान की अवेयरनेस होना, पता चलना कि मेरे पास अभिमान किस किस रूप में है, ये भी बहुत आवश्यक है। बहुत आत्माओं को उनके अभिमान का आभास नहीं होता, वो टकराव में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, उनका मन उलझनों में उलझा रहता है, खुशी नहीं रहती, चित्त में शांति नहीं है, तो समझ लेना चाहिए अहम काम कर रहा है। हमारे अध्यात्म के, हमारी स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल अपोजिट हो गया अहम। इसलिए हम सभी, मैं ये नहीं कहूंगा जो करना चाहें वो करें, हम सभी इस अहम के विष को अमृत में बदलें। अहंकार विष है और स्वमान अमृत है। स्वमान जितना जितना हमारा महान बनता जाएगा, ऊपर जाएगा, अभिमान स्वतः ही डाउन जाएगा। ऑटोमेटिक है ये, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। कई लोग ऐसा सोचते हैं, शायद स्वमान में रहना भी तो अभिमान है। अगर ये अभिमान भी है तो ये आत्म अभिमान है, विशुद्ध अभिमान है, जिसकी हमें जरूरत है। अगर ये न हो तो देखो क्या होता है दुनिया में। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बहुत सरल चित्त हो गए, आप बहुत सेंसील हो गए, आप में सुनने की शक्ति आ गई, गुण आ गए, लेकिन आप में स्वमान नहीं है तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ज्यादा काम देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, मजाक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। लेकिन अगर स्वमान बहुत श्रेष्ठ है तो ये सब नहीं होगा। स्वमान के वाइब्रेशंस हमें बहुत प्रभावशाली, हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं, हमें पावरफुल बनाते हैं। तो सभी इस पे ध्यान देंगे। निमित्त भाव, क्या क्या याद रखेंगे? दो बातें बहुत सुंदर हैं। बाबा करण करावन हार है। मैं इसका दूसरे शब्दों में कहूंगा और सरल और प्रैक्टिकल हो जाए। बाबा की शक्तियां ही हमारे साथ काम कर रही हैं। केवल निमित्त बनने के लिए ही नहीं, मोस्ट पावरफुल बनने के लिए भी अभ्यास। बाबा की शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं। पावरफुल हो गए ना हम। बाबा ने कभी कहा है, कर्म करते हुए अगर तुम्हें ये याद रहे, केवल याद, करण करावन हार, बाबा की शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं, तो काम में डबल फोर्स तो सहज ही हो जाएगा, कई गुना फोर्स। कार्य की कठिनाइयां भी समाप्त हो जाएंगी, कार्यों में जो विघ्न बाधाएं पड़ते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, और कार्यों का समय भी कम हो जाएगा, सफलता होगी। सभी इस चीज को अब अपनी नेचर बनाएं। जो डॉक्टर बैठे हैं, हॉस्पिटल वाले, संकल्प कर लें, बाबा की शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं। और ऐसा ड्यूटी आवर्स में 5 बार अवश्य कर लें। बस ये संकल्प है, केवल फीलिंग तो हमें सहज होगी, क्योंकि हमारा रोज का ये अभ्यास है, हमें ज्ञान भी है। परमात्म शक्तियां, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं। कितना सूक्ष्म नशा हो जाएगा, अपने अकेले जा रहे हैं, विनाश काल आएगा। अगर अभी से हमें ये आदत हो जाएगी विनाश काल में हमें नेचुरल स्मृति रहेगी, परमात्म शक्तियाँ मेरे साथ हैं, तो भय नहीं रहेगा। भटकती आत्माओं का भय नहीं होगा, भटकती आत्माएं वार भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा उस समय, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि करोड़ों करोड़ों आत्माएं भटका करेंगी ऊपर, हमारे ही ऊपर आकाश में, उनके निगेटिव वाइब्रेशंस नीचे वालों को कष्ट पहुंचाएंगे, वातावरण में बिल्कुल निगेटिविटी, अशांति, एक नेचुरल सी टेंशन बनी रहेगी। ऐसे में ये स्मृति अभी से, बाबा की शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं, हमें बहुत अच्छे अनुभव कराएगी। दूसरी बात, बाबा की प्रसिद्ध बात है, लेकिन उसे भूलें नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है वो परमात्म देन है, प्रभु प्रसाद है। देख लें हम सभी मनुष्य को किस किस चीज का अभिमान होता है, मोटे अभिमान, बल का, धन का, पद पोजीशन का, बुद्धि का, पढ़ाई का, ये मोटे अभिमान है। परिवार का भी होता है, कुल का, मैं इस कुल से हूँ, इस जाति का हूँ, अहंकार छूटता ही नहीं, हमारे इतिहास में वर्णन है राजपूतों का अहंकार छूटा ही नहीं, इसलिए पतन होता गया। अहंकार और ईर्ष्या द्वेष ने राजपूतों को राजाई छोड़ने के लिए विवश किया, इतिहास है इसका पूरा। अगर वो दो भी मिल जाते आपस में तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हरा देते, मुसलमान भारत में रहते ही नहीं। लेकिन मुसलमान राजपूतों की इस कमजोरी को जानते थे, वो उनको आपस में लड़ाई रखते थे, पर अंग्रेजों की तो नीति ये थी डिवाइड एंड रूल, वो लड़ाई रखते थे। तो कुल का अभिमान, ये मोटे अभिमान, सूक्ष्म अभिमान, मैं ज्ञान में 50 साल से हूँ, चाहे अनुभव हो या ना हो, 50 साल पुराना तो हूँ, मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ, अपनी सफलताओं का अभिमान, अपनी प्लानिंग बुद्धि का अभिमान, अपनी कुछ सूक्ष्म प्राप्तियों का, और सूक्ष्म है तो कभी कभी गुणों का, पुरुषार्थ का, बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है, मोटा नहीं है। लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह विवेक युक्त पहचान लें, रियलाइज कर लें, हमें यदि जीवन में सफलता मिल रही है तो ये बाबा का वरदान है। हमारा जीवन यदि बहुत अनुभवों से गुजर रहा है तो इसमें बाबा की मदद हमारे साथ है। अगर उसकी मदद हमसे हट जाए तो हमारे अनुभव लोप हो जाएंगे। हम यदि बहुत अच्छा क्लास कराते हैं तो ज्ञान भी कहाँ से आया, बोलना भी किसने सिखाया, हम जानते थे क्या बोलना, सब प्रभु देन है। हर जगह कोई सेवा करता है, उसने बहुत सेंटर खोल दिए, उसके पास अच्छे अच्छे भाई बहने आते हैं, ये बाबा का कार्य चल रहा है। मैं उस दिन से बहुत ज्यादा एक बात पे विचार रखता हूँ, अभी अभी आपको याद है बाबा की मुरली आई, ब्रह्मा बाबा जब देखते हैं कि बहुत बच्चे आ रहे हैं तो बाबा को ख्याल चलता है, चिंता होती है इतनों को कहाँ रखेंगे, तो पास वाले मकान किराए पे ले लें, तब लिया करते थे पूरे सीजन के लिए, 1000 रुपए में एक मकान था वो ले लेते थे, उसमें भाई बहने आते थे। और ये तो वो समय था जब हमारे पास आने वाले अधिक से अधिक 100 लोग होते थे, तब का ये संकल्प है बाबा का। तो शिव बाबा ने क्या कहा था, वेट एंड सी, तुम चिंता बिल्कुल न करो, जैसे कल पहले हुआ था वैसे ही फिर हो जाएगा। अगर तब बाबा सोचते हैं कि 30,000 लोग आएंगे क्या करेंगे, 30,000 तो सारे आबू की पॉपुलेशन भी नहीं है, तो वैसे ही परेशान हो जाए ना मनुष्य। लेकिन सब होता आया तो मैं क्या सोच रहा था इस पर आप भी सोचें। शिव बाबा कितना निर्संकल्प है, नो क्वेश्चन नो थॉट, निराकार। कई लोग पूछते हैं ना परम धाम में बाबा को संकल्प चलते हैं, पर चलाने की जरूरत हो तब तो चलें। उसको बहुत अच्छी तरह पता है ना, पता तो हमें भी है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। चिंतन करेंगे आप सभी इस पर, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, ऑटोमेटिक होता रहेगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा। ऐसे ही मुझे दूसरा चिंतन कुछ समय से जलता रहता है, ये चिंतन आत्मा को निर्संकल्प करता है कि देव कुल की सभी आत्माओं को तो बाबा के पास आना ही है। ऐसी लहर चलेगी जल्दी ही कि जितने भी देवी देवता हैं, जो कहीं गांव में भी हैं, उन सब को टच होने लगेगा, सब सत्य को रियलाइज करेंगे और पहचान के बाबा के पास आ जाएंगे। तो हम भी बाबा की तरह अपने को निर्संकल्प करने का संकल्प कर लें। नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, चित्त को शांत कर दें। नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। चिंतन की जरूरत है इसके लिए, बिना चिंतन के ये स्थिति नहीं आती है। इसलिए मैं आप सभी को एक राय और दूंगा, सभी अपनी दिनचर्या से रोज आधा घंटा एकांत का अवश्य निकालें, जिसमें अच्छा चिंतन करें। चिंतन की बातें रोज हमें मुरलियों से मिलती रहती हैं। किसी को अगर सीखना हो चिंतन कैसे चलाया जाए, तो सहज बात, स्वमान का अभ्यास करने लगो। एक 25 पॉइंट आप स्वमान की अपने पास नोट कर लें अच्छे अच्छे, उन्हें धीरे धीरे पढ़ने लगे, बस अंदर की चिंतन शक्ति जागृत हो जाएगी। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, बहुत पहले का है, 35-37 साल पहले एक अहमदाबाद का कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि एक घंटा मुझे आपसे चाहिए, कुछ समस्याएं हैं मुझे डिस्कस करना है। मैंने उसको कहा, मैं एक घंटा तो देना भी नहीं चाहता था, मैंने उसे कहा आप कल आना और तब तक 50 पॉइंट स्वमान की लिख कर लाना। और कैसे करना है मैंने उसको सिखाया। पहली पॉइंट लिखना, मैं एक महान आत्मा हूं, लिख लिया। अब उसे दोबारा पढ़ना धीरे से, ये सच है कि मैं एक महान आत्मा हूं। 10 सेकंड हो गए। तीसरी बार पढ़ना, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। एक एक पॉइंट लिखना और तीन तीन बार ऐसे, भले ही 50 मिनट लगाना, ऐसे करना। वो अगले दिन आ गया उसी टाइम और मैंने कहा लिख ली 50 पॉइंट कि हाँ 50 पॉइंट लिख कर ले आया हूँ। मैंने कहा बैठो और क्या समस्याएं हैं मुझे बताओ। उन्होंने कहा बैठने की जरूरत ही नहीं, अब मेरे पास कोई समस्या नहीं है। ये तब मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किया करता था, तब तक एक्सपेरिमेंट का ज्ञान नहीं था हमें इतना। स्वमान हमें हमारी शक्तियों की याद दिलाता है, अरे तुम इतने शक्तिशाली और एक मच्छर से डर रहे हो। संकल्प मच्छर हो गया ना, छोटा सा, काटता तो रहता है, सोने तो नहीं देगा, पर है तो मच्छर छोटा सा। याद आता है तुम कितने महान और ये बातें कितनी छोटी। विशेष स्वमन से ये स्मृति जागृत होगी तुम कितने शक्तिशाली और समस्या कितनी कमजोर, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम क्यों परेशान हो गए हो। तो चिंतन शक्ति बढ़ाने के लिए स्वमान को याद कर लें, आप भी कर लेना, 25 पॉइंट लिख लो जो आपको अच्छे लगे। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लिस्ट भी लगी हुई है उधर, लेकिन सुंदर जो आपके दिल को आकर्षित करे और उस पर इस तरह काम करना। तो हम निमित्त भाव, निर्माण चित, निर्मलता, तीनों पे काम करेंगे जीवन में। ये पूरे जीवन की साधना है हमारी, निर्मलता। अंदर किसी के लिए भी कोई ऐसी वैसी भावना न रहे, वैर भाव, इसने मुझे बहुत सताया है, बदला लेना है। नेचुरल साइकोलॉजी है ना, जब तक बदला न ले चित्त चैन नहीं पाता। पर वो चैन कितनी देर का होता है? अल्पकालीन। बदला तो ले लिया, खुश हो गए हम, लेकिन थोड़ी देर में चित्त फिर बेचैन हो जाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध करेंगे, याद रखेंगे हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं, याद रखेंगे सभी। तो निमित्त भाव अपनाएंगे, हम निमित्त हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम करा रही हूँ, यहाँ से शुरू होता है निमित्त भाव, साक्षी भाव। और बाबा की शक्तियाँ, उसके गुण मेरे पास हैं। अभिमान को स्वमान से दूर करेंगे और वाणी को और स्थिति को निर्मलता देंगे, निर्मल। जैसे बाबा के मन में किसी के लिए कुछ ऐसी वैसी भावना नहीं ठहरती, सब मेरे बच्चे हैं, सब अच्छे हैं, सब महान बन जाएंगे। गाली देने वाले भी तो थे, हिंदू धर्म के कई संप्रदाय कितना विरोध करते थे, सनातन वाले भी करेंगे, राम को भगवान नहीं मानते, ये कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो आर्य समाजी भी, साउथ में गए तो दूसरे लोग भी, विरोध हुआ ना। लेकिन बाबा के मन में किसी के लिए भावनाएं बदली नहीं, वो जानते हैं मनुष्य का काम विरोध करना है, जब तक वो नहीं जानेगा तब तक तो विरोध करेगा ही ना, उसकी नेचर है। कई लोग बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही विरोध करते हैं, ब्रह्मा कुमारिया नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है ये पता नहीं, अच्छा नहीं है। अगर उनसे पूछे तुम कभी गए हो देखा है क्या अच्छा नहीं है, ये पता नहीं, लोग कहते हैं अच्छा नहीं है। तो कईयों को विरोध करने की आदत होती है ना, तो बाबा को उनके ऊपर रहम आता रहा। आएंगे ये सब बाबा के पास। स्वमान याद होंगे आपको, याद दिला दूं फिर से, टेंशन फ्री लाइफ बाबा का लास्ट, याद है ना। मैं प्रकृति की मालिक हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, इस धरा पर महान आत्मा हूँ, तीन स्वमान। इन्हीं तीन स्वमानों के द्वारा योग युक्त होकर सकाश भी देंगे दोनों टाइम, प्रकृति को भी सकाश। याद होगा मैंने बताया था पीछे, जो नए हैं वो सुन लें, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, पवित्रता का फरिश्ता। ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें पड़ रही हैं, जैसे बरसात होने लगी मुझ पर, मेरे सामने प्रकृति के पांचों तत्व और सारे ग्रह हाथ जोड़े खड़े हैं नमन मुद्रा में, हम उनके मालिक हैं। हमारे मस्तक से, नैनों से, अंग अंग से अब पवित्रता की किरणें फैलने लगी, सबको मिलने लगी। ये अभ्यास बहुत सुंदर है, से सुख समतन में बिल्कुल सहज बाप दादा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, हाथ से बाबा की शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश करने लगी, फिर मेरे मस्तक से निकलने लगी, सामने ग्लोब धरती का गोला उसको जाने लगी। तीसरा पहाड़ी के ऊपर बैठकर तो सभी बहुत ही उमंग उत्साह से आगे चलते रहेंगे, ढीलापन ना आए। इसलिए 500 रूपों का अभ्यास, जब भी ढीलापन आ जाए आप सारा दिन और कुछ न करें, हर घंटे में एक दो बार 500 रूपों को याद कर जाए। ऐसे ही मान लो मन एकाग्र भी नहीं हो रहा है, 10 सेकंड में एक एक याद कर लें, एक मिनट में पांचों, एक ही दिन में स्थिति फिर से सेट हो जाएगी, बहुत अच्छे अनुभव होने लगेंगे। ओम शांति। चलो अभी ऊपर पहाड़ी पर बैठेंगे, सांस लेंगे, सभी महसूस करें एक ऊंची पहाड़ी, उसके ऊपर मैं, जैसे शंकर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, मैं तपस्वी पहाड़ी की चोटी पर, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं।
Oh।